क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण मन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया।
ओम शांति। हम प्रेम नगर के बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने, हम श्याम के नाम की दीवानी, नितनेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रिज की भोली गवारी निया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने। मैं प्रेम नगर की बंजारन आत्मा, जब परमात्मा को ही अपना एकमात्र आधार बना लेती है, उसी के प्रेम में खो जाती है तो मगन हो जाती। अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाए, बस एक ही संकल्प है, जैसा वो है वैसे हम बन जाए, किए बाबा से जो वादे वही पूर्ण कर दिखाए, दैवी गुणों का सदा पहने रहे हम गहना, तेरे वतन में बाबा दिल चाहे अब तो रहना, जहां वो रहता है वहां हम रहे, जैसा वो है वैसे हम हो जाए, जैसे वो बोलता है वैसे हम बोले, जैसे वो कहता है करता है सोचता है, जो उसे पसंद है वो हमें पसंद, जो उसे पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं। ये प्रेम की परिभाषा है। देह और देह की दुनिया से दूर दूर रहना, शरीर और शरीर की दुनिया उसे पसंद बिल्कुल नहीं, शरीर को देखना, शरीर भान में रहना, शरीर की बातें करना, शरीर के भोगों में डूबे रहना, सब ज्ञान का शत्रु है। अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाए, किए बाबा से जो वादे वही पूर्ण कर दिखाए, दैवी गुणों का सदा पहने रहे हम गहना, तेरे वतन में बाबा इस तन में हम है बैठे, इस शरीर में हम बैठे हैं, एक आश ये लगाए आए घड़ी वो ऐसी, हम उड़ वतन में जाए, आकारी बन फरिश्ता बाबा के संग है रहना, तेरे वतन में बाबा दिल चाहे अब तो रहना, आकारी फरिश्ता बन जाए ये चाहना, ये इच्छा, ये इच्छा कितनी तीव्र है, क्या बनने की, एंजल, फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात जो अव्यक्त है, फरिश्ता अर्थात जो व्यक्त नहीं, फरिश्ता अर्थात जो अशरीरी है, फरिश्ता अर्थात उसे शरीर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, शरीर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, स्थूल चीज़ें जो है, मटेरियल चीज़ें जो है, टेम्पोरल चीज़ें, इस संसार की जो चीज़ें, ऑर्डिनरी चीज़ें जो है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, शरीर से प्राप्त होने वाले जो सुख है, खाने का, पीने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श का, इंद्रियों का, जो कुछ काम का, क्योंकि अनुभव ये कहता है कि शरीर से संबंधित सारे सुख आत्मा को गिराते हैं और उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पहले ही आत्मा उसमें पिंजरे में फंसी हुई है, उसमें ही पिंजरे का पक्षी अगर घायल हो जाए, बीमार पड़ जाए और गिर जाए पिंजरे के अंदर ही, तो उसका वो जो फ्रीडम था पिंजरे के अंदर घूमने का वो भी गया। इसके लिए योगी शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, शरीर के सुख उसके दुश्मन है, पर वो शरीर को दुख भी नहीं देता है, शरीर में रहते हुए शरीर की संभाल करते हुए ऐसी एक युक्ति, ऐसी एक विधि ढूंढ लेता है कि शरीर में है परंतु शरीर उसे स्पर्श नहीं करता, कोई सुख में इस हद तक नहीं डूब जाता कि वो एडिक्शन हो जाए, कोई गीत को इस हद तक नहीं सुनता कि वो गीत ही सुनने बिना चैन नहीं, वो गीत ही एडिक्शन हो गया, कोई दृश्य, कोई खाने की चीज़, कोई पदार्थ जिसे वो स्पर्श करता है उसके स्पर्श के सिवा सुख ही नहीं मिलता। इस तन में हम है बैठे, एक आश है ये लगाए, जैसे इस तन में मैं बैठा हूँ, आए घड़ी वो ऐसी हम उड़ वतन को जाए। गंगा के तट पर एक बार एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, दो लोग बैठ गए, दो महापंडित, प्रकांड ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाता, और चर्चा चालू हुई कि समंदर जो है कितना डीप है, क्या मापा जा सकता है, कितनी गहराई है उसकी। हर एक ने अपने अपने तर्क लगाए कि इतना बड़ा हो सकता है, उतना बड़ा हो सकता है, मेरे शास्त्र में ऐसा लिखा है, इतने योजन का है, उतना वैसा है। एक गरीब व्यक्ति वहाँ बैठा था, वो कहता है आप जो बातें कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, पर एक बात मैं जानता हूँ, अगर समुद्र को नापना है तो उसमें उतरना चाहिए। वो कहता है चुप बैठो मूर्ख, ना तुमने शास्त्र पढ़े हैं ना तुम्हारे पास कोई ज्ञान है। वो कहता है इतना तो मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि समुद्र की गहराई यदि मापनी है तो समुद्र में उतरना पड़ेगा, इसमें शास्त्रों का क्या लेना देना। वो दोनों पंडित कहते अच्छा। गंगा तट को छोड़कर वो लोग समुद्र तट पर पहुंचते हैं और दोनों ही छलांग लगाते हैं, पर कहानी कहती है ये जो दो पंडित जो थे दोनों, ये नमक के बने हुए थे, ये नमक के बने हुए थे, तो इनकी इच्छा थी समुद्र कितना गहरा है जानने की और जानकर दूसरों को आके बताने की, तो ये दोनों कूद पड़ते हैं और धीरे धीरे नीचे नीचे जाने लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं पिघलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, और फिर रहते ही नहीं। अब कौन वापस आकर बताएगा कि समुद्र कितना गहरा है, क्योंकि जो उसमें कूदा वो गया, वो तो वापस आया ही नहीं। साइंस कहता है हम भी किससे बने हुए, समुद्र से, पानी से, 60% पानी है, परंतु डिपेंड करता है उम्र क्या है, कहाँ रहते हो, उस हिसाब से 45% से लेके 70% तक हम पानी से हैं अंदर, एवरेज 60, और नमक। कुछ कुछ इतिहासकार या फिर वैज्ञानिक कहते हैं हम लोग फिश से आए हैं, ये उनकी अपनी थियोरी है। कहने का भाव चेतना जब छलांग लगाती है महाचेतना में तो डूब जाती है, खो जाती है। वापस आकर दूसरों को कौन बताएगा? हाँ, पर कुछ कुछ आत्माएं रह जाती है, या कुछ कुछ आत्मा को यदि महासागर सोचे कि इसको मैं रखूं, तो उसके द्वारा संसार को ज्ञान दिया जा सकता है। और आज तक उस महासागर ने केवल एक ही आत्मा को रखा, जिसने यहाँ पर डुबकी लगाई और वो उधर भी है, बीच में जो दीवार है दीवार के ऊपर वो बैठा हुआ है। वो इधर का भी जानता है, उधर का भी जानता है, दोनों को जानता है। और वो थी आदि देव आदि पिता की आत्मा। तो ब्रह्मा का महाप्रयाण हमने देखा, और देखने के और ये प्रयाण के बाद ऐसे 13 संदेश आए। एक तो अव्यक्त मुरली हमने देख ली, और 13 ऐसे संदेश आए, और इन 13 संदेश में बहुत सारे गुप्त रहस्य थे। और रहस्य कहाँ के थे? सूक्ष्म वतन के रहस्य थे। तो आज हम आज और कल दो दिन क्या देखेंगे? ये जो 13 संदेश थे उनमें से आज हम 6 संदेश देखेंगे, और इन 6 संदेशों में 12 ड्रिल है जो हमें करनी है, सारे दिन भर या आगामी दिनों में जब जब समय मिले तब तब। तो डिवाइन मैसेजेस एंड डिवाइन ड्रिल्स, 13 मैसेजेस हैं। एक तो कल हमने देखा था भाभा का सन्नाटा, कल अभ्यास किया। मैं आत्मा शरीर से एक एक अंग को छोड़ रही हूँ, बाबा की याद मुझे बुला रही हो, और संसार के सारे धागे दोरे कट रहे हैं, सारी रगे सिल्वर कॉर्ड्स कट हो रहे हैं, और मैं यहाँ से उड़ते वापस जा रहा हूँ। ये अभ्यास जब भी लेट हो सोचना मैं तो गया, पता नहीं उठूंगा कि नहीं। यदि हमें कोई स्वप्न दिखे रात में और हम उठ जाते, सोचो यदि हम उठे ही ना और स्वप्न चालू ही रहे तो क्या होगा? वो स्वप्न ही धीरे धीरे रियल लगने लगेगा। उसी तरह लेटते हुए ये सोचना कि मैं गया, और सोचो ये स्वप्न जैसा है, और ये स्वप्न उठने के बाद भी चालू है, ताकि मैं इस संसार में हूं पर हुई नहीं। एक्सटेंडेड ड्रीम संदेश 1, हम संदेश को छोड़ देते हैं, सीधा ड्रिल पर आते हैं। ऐसी 12 ड्रिल, ठीक है। सबसे पहली ड्रिल, आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार। तो आज भी वतन में चक्र लगाने गए, जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे, और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते जाते, पृथ्वी की आकर्षण खत्म, हल्कापन। वैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। यह है ध्यान द्वारा, वह है साइंस द्वारा। ड्रिल नंबर 1, सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन में जाना और क्या सोचना क्या समझना, इस धरती की आकर्षण मेरी खत्म हो गई है, इस धरती की कोई चीज अब मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। तो बीच बीच में दिन भर में बैठना और क्या सोचना, जैसे रॉकेट जा रहा है ऊपर, और रॉकेट जैसे ही चांद पर पहुंचा ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, फ्लोटिंग स्टार्ट। एक स्कूल के मास्टर पूछते हैं कि नील पहले सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा? एक बच्चा कहता है नील आर्मस्ट्रांग पहला कदम। फिर पूछते हैं मास्टर जी कि दूसरा कदम किसने रखा? तो बच्चा कहता है नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा होगा, वैसे भी लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था वहां पर। जैसे ही हम हायर प्लेन्स पर जाते हैं शरीर की आकर्षण कम होती है, स्थूल में आते हैं, जैसे हम पर्वतों पर चढ़ते हैं पहाड़ों पर, अपने आप देहभान कम होता है। योगी जन कहाँ तपस्या करते थे? पहाड़ों पर। इसलिए जब जब समय मिले और छुट्टी मिले और टाइम मिले पहाड़ों पर जाओ। बाबा क्या करते थे? बच्चों को कहाँ ले जाते थे? पहाड़ों पर ले जाते थे, क्योंकि पहाड़ों पर जाते ही वहां की हवा कैसी होती है? शुद्ध हवा, प्योर एयर। शुद्ध हवा में वो सब कुछ है जो हमारे शरीर को आवश्यक, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। एयर इज द रिजर्वॉयर ऑफ एवरीथिंग दैट वी नीड। शुद्ध हवा, फ्रेश एयर, जितनी हवा शुद्ध होती जाएगी शरीर स्वस्थ होते जाएगा और आत्मा शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव करे। इसलिए शहरों में देहभान ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक, भीड़ भाड़, पोल्यूशन, देहभान रहता है। और जैसे ही शुद्ध आबू की आबू पर्वत पर आते हैं तो क्या होता है, लोगों को अनुभव होता है। मधुबन में आते क्यों अशरीरपन का ज़्यादा अनुभव होता है, एक कारण पहाड़ भी है, हाइट, शुद्ध हवा है, आबादी कम है। और जितना शहरों में जाओ वहाँ पर वाइब्रेशंस कैसे हैं, लोगों के प्रकंपन है, सब भाग रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, कमर्शियलिज्म, लूट रहे एक दूसरे को, करप्शन है, वो वाइब्रेशंस है वहाँ। यहाँ देखो कैसे वाइब्रेशंस, सुबह सुबह आवाज़ आ रही है ना चिड़ियों की, गा रही है चिड़िया। तो सबसे पहली ड्रिल ऊपर, कहाँ जाना, ऊपर, ये सोचो मैं ऊपर हूँ। और ये भी योग कर सकते कि मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, मैं हिमालय की चोटी पर बैठकर योग कर रहा हूँ, आबू पर्वतों के ऊपर बैठकर योग कर रहा हूँ, शांति शिखर पर, पीछे वाले बड़े बड़े गुरु शिखर पर बैठकर योग कर रहा हूँ, अघाई माता वहाँ जाकर योग कर रहा हूँ, टोड रॉक, अनादरा वहाँ जाकर योग कर रहा हूँ। इमेजिन, मन से इमेजिन। अगर कोई मन से इमेजिन करे कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, बहुत तेज भाग रहा हूँ, भाग नहीं रहा है, खाली इमेजिन करे, थोड़ी देर के बाद सांस फूलने लगेगी मन, पर फील करना है उसको। वर्चुअल रनिंग, ये वर्चुअल रियलिटी का जमाना है, मन में जो हो गया वो साकार में भी हो जाता है। तो सबसे पहली ड्रिल कौन सी, ऊपर चढ़ना। ऊपर जाते ही नीचे का फोर्स कम होता है, जिस समय बहुत ज़्यादा देहभान आ रहा है, मन में विकार और वासनाएं उत्पन्न हो रही है, पहला काम क्या करना है, वहां से निकल जाओ, छत पर जाओ, टहलना चालू करो। मन पर अचानक आक्रमण हो गया है किसी के आकर्षण का, चेंज द प्लेस, गार्डन में जाओ, वॉक पर निकल जाओ, बैग टंगाओ अपनी और जाओ 5 किलोमीटर बिना पैसे के, नहीं तो आते समय सोचेंगे कि रिक्शा से आ जाता हूँ। गो फॉर लॉन्ग वॉक। विदेशी लेखक लिखता है, मेरा पिताजी के साथ झगड़ा हो गया, भयंकर, रात भर झगड़ा चला, इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि सुबह मैंने कहा एक तो इस घर में आप रहेंगे या मैं। पिताजी ने कहा निकल जा घर से, और मैं निकल गया, निकल पड़ा। और 4 बजे होंगे, अमृत वेला समय था वैसे भी, घर से निकल गया वॉकिंग, अब पैसे तो थे नहीं, वॉकिंग चलता गया, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और इतनी शुद्ध हवा और इतनी फ्रेश एयर, कंट्री साइड, और वॉक करते 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलती तो मेरी है। वॉकिंग के साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में उसने लिखा है ये, वॉकिंग के फ़ायदे। 5-10 किलोमीटर चलने के बाद वापस ही चुपचाप घर आ गया। तो वॉकिंग से क्या होता है, अपनी गलती रियलाइज होती है। तो जैसे ही आक्रमण हो, विकारों का आक्रमण हो, विचारों से काम नहीं करना है, स्थूल में काम करना है, शरीर के साथ एक्सरसाइज चालू कर दो सीधा, एग्रेसिव, ट्रेडमिल, वर्कआउट, पुशअप्स, पुलअप, स्क्वैट, लंजेस, सब चालू कर दो, क्रंचेस फटाफट चालू करो, तब तक पसीना आ जाए, फिर देखो क्या होता है, अपने आप चेंज होता है माइंड। तो सबसे पहली ड्रिल कौन सी करनी है, बार बार सूक्ष्म वतन में जाने की, बार बार ऊपर जाने की, बार बार छत पे जाओ, पहाड़ों पर जाओ, कहीं तो जाओ, नहीं जा सकते तो मन से जाओ। तो ये फर्स्ट ड्रिल, ऊपर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और हम उड़ने का अनुभव करें, ड्रिल नंबर 2। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया, एक लाइट की ऊंची पहाड़ी। बाबा जितने भी मैसेजेज है उसमें एक पहाड़ी तो होती है लाइट वाली, फिर उसके ऊपर शक्ति, सेना, पांडव दल है, नीचे भीड़ लगी हुई है, लिखा हुआ है मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं, फिर आकाशवाणी होती है थोड़ी देर में, शक्ति और पांडव द्वारा ही कल्याण होगा, और फिर उनको साक्षात्कार होने लगे हमसे, किसका साक्षात्कार, अव्यक्त ब्रह्मा का, शिव बाबा का। और फिर इस पर बाबा ने सुनाया कि अंतिम समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बहुत स्थिर हो जाएगा, अभी तो बहुत पुराने हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर शांत हो जाएगा, कोई भी हलचल न मन में न तन में, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो ड्रिल नंबर टू, ड्रिल नंबर टू नहीं, ड्रिल नंबर टू देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति अर्थात जिसमें शरीर स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए। अभ्यास क्या करेंगे? शरीर को स्थिर रखने का अधिष्ठान। आज दिन भर में ये अभ्यास करो। कब करेंगे? दोपहर में। दोपहर में एक मुद्रा में बैठ जाओ, कोई भी एक मुद्रा, और फिर अभी नहीं, दोपहर में हैंड को फिक्स कर दो या कहीं पर भी रख दो, घड़ी सेट कर दो 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स तक आंखें बंद, हाथ स्थिर, और एक जर्रा भी नहीं हिलना। 45 मिनट जैसे स्टैचू, जैसे मूर्ति। 5 मिनट के अंदर ही कहीं खुजली होना चालू हो जाएगी, कोई मच्छर काटेंगे और हाथ खोल के देखेंगे मच्छर है ही नहीं, फिर काट कौन रहा था, मन में मच्छर भरे। ये एक अभ्यास है योगियों का। बुद्ध को देखा कैसे बैठे, महावीर को देखा कैसे बैठे, स्थिर। बुद्ध आते हैं, बुद्ध का एक शिष्य सारिपुत्र बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, उसको देखकर बुद्ध कहते हैं साधो साधो साधो। जैसे हिमालय की उत्तुंग शिखर, जैसा ही शिखर है कोई, स्थिर, कोई संवेद, कोई हलचल नहीं, जरा भी हलचल नहीं। शरीर पर जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी होकर देखना, या खुजली या कुछ हो रहा है या दर्द हो रहा है, उस दर्द को उतनी उतनी एक एक एरिया को साक्षी होकर देखना। वहां दर्द हो रहा है थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा, यहाँ ये हो रहा है थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा, स्थिर। और शरीर को स्थिर करते करते एक अनुभव ऐसा आएगा कि केवल तरंगे ही तरंगे दिखेगी, और फिर बाद में केवल आत्मा में बोलना नहीं पड़ेगा मैं आत्मा हूं, अनुभव होगा कि शरीर भंग भंग भंग, शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, चूरा चूरा हो गया, शरीर बचा ही नहीं, केवल मैं आत्मा बची हूं। तो 45 मिनट्स का ये अभ्यास है, तो आज करके देखना। जिनको पैरों में दर्द है, जो भी है, पैर नीचे रखो, चेयर पर बैठो, पर एक बार बैठ गए अलार्म लगा के बैठना, 40 मिनट्स तक बिल्कुल नहीं हिलना। घबराओ मत, फ्रैक्चर नहीं होगा। आज तक ऐसी कोई केस सुनी नहीं है कि वैसे बैठे फ्रैक्चर हुआ है। असहनीय पीड़ा और वेदना होगी पैरों में, उस पीड़ा को और उस वेदना को दर्द साक्षी होकर देखो कि वो दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, उसको भी साक्षी होकर देखो। ये अभ्यास है, चेयर पर बैठकर करो, अगर नहीं होता है नीचे बैठकर तो चेयर पे सिंपल हो जाएगा, परंतु जो नीचे बैठकर जो प्रैक्टिस है उसका तो कोई मुकाबला नहीं। योगी अर्थात प्रैक्टिस करने के लिए 15 मिनट से चालू करो, 15 मिनट सफल हो गए तो हाफ एन आवर पे जाओ, हाफ एन आवर सफल हो गया तो 45 मिनट तक पहुंचो, पर एक घंटे का तो मिनिमम पीरियड होता है अधिष्ठान का, वन आवर। और रियल तपस्या तो जब चालू होती है जब शरीर में पेन होता है, उस पेन को ही तो देखना है साक्षी होकर, वो पेन ही तो होगा तभी तो साक्षी होकर पता चलेगा। पसीना आना चाहिए, गर्मी में इतना पसीना आने दो, पसीना, पसीने से मर नहीं जाएंगे, ठंड में करना, ठंड से मरता नहीं है कोई, उस ठंडी को ही तो साक्षी होकर देखना है। योगी अर्थात ठंडी गर्मी से परे जाता है। तो सेकंड ड्रिल, शरीर को स्थिर। बाबा कह रहे अंत समय आएगा, तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, कोई हलचल नहीं होगी, इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। आत्माओं को तुमसे साक्षात्कार होगा, किसका? अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा और शिव बाबा का साक्षात्कार होगा। इसका अब से अभ्यास करो, शरीर को स्थिर। हम लोग जो योग करते हैं उसमें क्या करते हैं, इधर पैर, इधर शॉल, शॉल ठीक है परंतु उसको फिर भी एडजस्ट ही करते रहते हैं, यही योग चलता है आधा तो, शॉल योगा फिर इधर कुछ करते हैं, फिर इधर खुजली, फिर इधर खुजली, फिर इधर खुजली, फिर इधर खुजली, खुजली, शॉल को ठीक करना, मच्छर, और कौन क्या कर रहा है, और फोन, फोन में हाँ कोई नहीं, ठीक है, मैसेज अभी तक कोई नहीं आया, ठीक है, और फिर आंखें इधर उधर, काक। ड्रिल नंबर टू। ड्रिल नंबर थ्री, आज जब मैं वतन में गई तो बाबा हम सबका स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही पहुंची तो साकार बाबा साकार रूप में दृष्टि में याद दे रहे थे। आज की दृष्टि में विशेष प्रेम का सागर का रूप इमर्ज था। ड्रिल नंबर थ्री, बाबा से दृष्टि लेना और दृष्टि में क्या देखना, जैसे उन आंखों में प्रेम का सागर है, क्या झलक रहा है उन नीली नीली आंखों में, उन पानीदार आंखों में, उन गहरी गहरी आंखों में, डार्क डार्क आईज, डीप डीप आईज में क्या है, उसमें प्रेम का सागर है, उसमें कौन झांक रहा है, परमात्मा, उस आंखों के पीछे से कौन देख रहा है, शिवाबा देख रहा है, यह अनुभव। और इसमें और एक चीज जुड़ी हुई है, एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी और बच्चे की याद दो प्रकार की थी, एक थी अव्यक्त याद और कईयों की याद में व्यक्त भाव के साथ, 75% याद अव्यक्त थी, 50% मिक्स थी। तो याद कैसी हो, दो प्रकार, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त अर्थात स्थिर, कोई अगर हिल रहा है डुल रहा है उसको अव्यक्त कहेंगे ना, संडली पर जैसे बैठ के योग कराते हैं ना, कराने वाला बस वैसे बैठना, क्यों इतना स्थिर बैठते हैं वहां पर इज्जत का सवाल है। बाबा की तो मदद रहती है और वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति रहती है वहां पर, कोई दिखावा नहीं, अपने आप आत्माभिमानी स्थिति आ जाती है, सामने की पब्लिक तो खो जाती है थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर भान रहता है, बाद में वो खो जाता है, केवल मैं आत्मा हूं रह जाता है, शरीर रहता नहीं है और ये आत्माएं हैं, बस इतना भाव रहता है, ये भी सत्य है। परंतु अगर ये सत्य है तो पीछे जब उठ के आ जाते हैं फिर क्या हो जाता है, फिर ढीले ढाले हो जाते हैं, अर्थात ये सोचना कि मुझे सब लोग देख रहे हैं निरंतर, चाहे पीछे बैठे हो, कमरे में अकेले हो, दरवाजे खिड़कियां बंद है, उस समय भी मैं कहां हूं, संदली पर हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे आज, जब जब बाबा के कमरे में जाओ तो क्या सोचोगे, इन आंखों से प्रेम झलक रहा है, प्रेम का सागर उसमें समाया है, सागर, सागर बहुत बड़ी बात है, अथा अनलिमिटेड। ड्रिल नंबर 4, फिर एक और दृश्य इमर्ज हुआ, देखा कि सभी के संगठन खड़ा, सब संगठन खड़ा है और ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, कौन से, दिव्य गुणों के फूलों की, बाबा वर्षा कर रहे हैं, परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया। तो आज सारे दिन भर और एक अभ्यास करना है, कौन सा, ये ड्रिल है, मुझ पर क्या हो रही है, कौन सी वर्षा, दिव्य गुणों की फूलों की वर्षा हो रही है, जहां जा रहा हूं वहां पर फूल गिर रहे, बीच बीच में थोड़े से ऐसे निकाल, दिव्य गुणों के फूलों की मुझ पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, चल रहा हूं फूलों की वर्षा, खा रहा हूं फूलों की वर्षा, सो रहा हूं फूलों की वर्षा, उठ रहा हूं फूलों की वर्षा, बात कर रहा हूं फूलों की वर्षा। तो क्या करेंगे, ऊपर से मुझ पर क्या हो रही है, फूलों की वर्षा। नेक्स्ट ड्रिल नंबर 5, 3 प्रकार के गुलाब देखे, पहला गुलाब लोहे का था, दूसरा हल्के पित्तल का और तीसरा रियल गुलाब। तो पहला गुलाब अर्थात वो संस्कार जो सबसे कड़े है, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, हथौड़ा लगता है, गर्म करना पड़ता है, बदलते नहीं है वो। दूसरा गुलाब अर्थात जो मेहनत से बदल जाते हैं, हल्का पित्तल वाला। तीसरा गुलाब अर्थात जो नेचुरल है, यह वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली है, सहज जिनके संस्कार हो गए। पवित्र बनने की 2 विधियां हैं, ब्रह्मचर्य धारण करनी, एक तो काम विकार के प्रति घृणा नफरत उत्पन्न करो, दिन रात गालियां दो काम विकार को, यह संसार की सोनाई सिखाई हुई विधि है। सन्यासियों ने क्या सिखाया है, काम विकार के प्रति घृणा घृणा नफरत, दिन रात वो गिराता है, ये करता है। दूसरी विधि जो भगवान ने सिखाई है वो है प्यूरिटी के फायदे, प्यूरिटी का महत्व, तुम्हारा स्वभाव ही प्योर है, तुम हो ही प्योर, तुम देवता थे, ये विधि एक, जिससे प्यूरिटी एकदम सहज ही आ गई। ये विधि थोड़ा ठीक है ना, उसमें निगेटिविटी भरी है, उसमें व्यक्ति के प्रति भी घृणा उत्पन्न हो जाती है, इसमें सहज है, सहज ही उठ गए ऊपर कि ये मेरा स्वभाव है, स्वीकार कर लिया बस। माता ओम मंडली में जो माताएं आई, इतनी फैशनेबल, नॉनवेज खाने वाली, फैशन करने वाली, नॉनवेज खाने वाली सोसाइटी, वो विकारी संसार था, और उसमें एकदम पवित्रता धारण कर ली, कैसे, क्योंकि बाबा ने आके एक बात कह दी कि तुम देवता थे, स्वीकार कर लिया आत्माओं ने। पति से तो प्यार होता है ना स्त्री का, पति को भी छोड़ दिया, इतनी पावरफुल ये स्मृति है। तो तीसरे नेचुरल, ऐसे सुनते सुनते बाबा ने क्या किया, फिर रियल गुलाब का फूल लिया और फिर क्या किया, उसके पत्ती जहज सहज अलग करने लगे और फिर कहा कि ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाओ। तो ये थी ड्रिल नंबर 5, कैसे बनना है रियल गुलाब जिसके सहज पत्ते हट जाए, वैसे हमारी सहज प्योरिटी आ जाए। ब्रह्मचर्य के लिए संघर्ष ना करना पड़े, किसी भी चीज के लिए सब कुछ कैसे हो जाए सहज नेचुरल। ऐसे बात करो कि ये मेरा नेचुरल संस्कार है, अरे ये तो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स में ना एफर्मेशंस दिए जाते हैं आजकल, जीतना तो मेरे लिए बहुत ही आसान काम है, अभी कभी दौड़ा नहीं आदमी, वो चालू यहाँ से करता है, ये खेल इसमें तो मैं एकदम कर लूंगा, मेरे लिए बहुत सहज है। ये रोज बताते रहो अपने आप को, दीज आर एफर्मेशंस एप्स, इसके एप्स बने हुए, अफर्मेशन फॉर रनिंग, अफर्मेशन फॉर डांसिंग, अफर्मेशन फॉर सिंगिंग, अफर्मेशन फॉर गिविंग स्पीच, भाषण देने के लिए मैं भाषण दे रहा हूँ एकदम सहज, कोई मुश्किल ही नहीं है। यही पहले चेयर पर बैठकर ही भाषण देता है व्यक्ति, व्हील चेयर पर, वो अपना चेयर पर रॉकिंग चेयर होती है ना, वहीं बैठकर देखता है हजारों लोग मेरे सामने, यही प्रैक्टिस है। फ्योडोर डोस्टोविस्की था एक मोस्ट फेमस रशियन नॉवेलिस्ट, वो लड़खड़ा था बोलते समय, आवाज फंबलिंग जिसको कहते, बोलते नहीं आता था उसको। वो क्या करता था, समुद्र के किनारे पर जाता था, पत्थर डालता था और जोर जोर से चिल्लाता था। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीकर बाद में बना, कैसे, उसको तो बोलते नहीं आता था, कैसे बन गया, प्रैक्टिस। तो यहां पर भी कौन सी प्रैक्टिस हो, ये जो देह के संबंध मुझे कभी नहीं खींचते, अरे इनसे तो मैं पहले से ही दूर हूं, ये तो एकदम फालतू है, ये काम बेकार, तो हम तो बहुत ऊपर उठ चुके, ऐसे दूसरों को नहीं बताना, खुद बताते रहना, नहीं तो लोग आ जाएंगे परीक्षा लेने, देखते कितने पानी में अपने आप को थोड़ा सा मुंह या मिट्टू कि ये विकार तो ये हमारे छूट गए, हम तो बहुत आगे निकल आए, वो गलियां बहुत दूर है, हम तो गांव छोड़कर आ गए, हमें पता ही नहीं वहां क्या है। बोकाजू के पास शिष्य आता है, वो कहता है कहाँ से आए, वो कहता है पेकिंग से आए, पहले जापान चीन की कैपिटल पेकिंग थी। वो उसको पूछते हैं वहां के चावल क्या भाव है, वो कहते हैं वहां के चावल 20 रुपये किलो। अच्छा 20 रुपये, जाओ तुम योग्य नहीं है मेरे, तुमको अभी तक याद है जहां से आए हो वहां के चावल क्या है क्या भाव, तुम यहां सीखने आए हो ना ज्ञान, तो भूलो वहां का सब कुछ। नेक्स्ट ड्रिल नंबर 6, ये ड्रिल में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। अगर संगठन के विषय में एक बात है कि अगर कोई अपना विचार रखे सामने तो उसको कट नहीं करो, अगर सीधा ही उसको कट करेंगे दोनों फोर्स टक्कर खाएंगे और रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेंगी। एक इसलिए एक दो के विचारों को अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है, इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। क्या करना है, एक दूसरों को रिगार्ड, अगर कोई सजेशन दे और कहे बकवास, ऐसा होता है क्या कभी, तुम जब भी मुंह खोलोगे ना कुछ ऐसा ही बोलोगे, हमको पता था पहले से ही, इसको तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। पर हर आत्मा विशेष है, चाहे मूर्ख से मूर्ख भी हो, परंतु कभी वो जो राय देगा ना उसमें कोई ना कोई टचिंग तो होगी बाबा की, सूक्ष्म टचिंग। वो कार वाली स्टोरी है ना, कार बन गई कंपनी में, निकल ही नहीं रही है, दरवाजा छोटा पड़ गया या वो हाइट छोटी पड़ गई उसकी और ऊपर से खरोच आ रही है, सब सोच रहे क्या करे क्या करे, कैसे कार को गैरेज से वो जहां बनी है कंपनी से बाहर निकाले, सब लोग इंजीनियर्स खड़े बैठ के सोच रहे क्या किया जाए क्या किया जाए। बेचारा चौकीदार है, वो कहता है हवा निकाल दो थोड़ी सी कार बाहर। कभी कभी महान से महान सजेशन कहां से आते हैं, जो वो छोटे से छोटा है ना उसके पास से। हमको याद है बचपन की, हमारे ही बचपन की बात है, जो एक ऐसा खंबा होता है ना, हम खेल रहे थे बॉल से, तो एक बार वो बॉल इस खंबे के वो पोल होता है पोल में घुस गया, तो हमको तो बॉल चाहिए था, कैसे निकाले बॉल को, हम सोच रहे थे सब लोग छोटे बच्चे कैसे निकाले, तो हमारे पिताजी जा आए वहां पे, तो क्या हुआ बॉल, तो बोले इसमें पानी डालो पानी डाला बॉल बाहर गया। तो युक्तियां जो है ना हर आत्मा के पास, कोई भी हो फिर हो, निकल जाएगी। तो हर एक को क्या करना है, राय के रिस्पेक्ट, किसके ओपिनियन। तो अगला ड्रिल नंबर 6th 7th, बाबा को पूछा गया बाबा वतन में सारे दिन भर करते क्या हो, यहां से तो चले गए, तो बाबा को क्या पूछा, दिनचर्या बताओ करते क्या हुआ। तो बाबा ने कहा चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। बाबा ने दिखाया, वहाँ एक म्यूजियम है, वतन में म्यूजियम, और वहाँ पे क्या लगे हुए, मॉडल्स थे। और दादी कहती है मैंने जाके देखा, ये तो हमारे ही मॉडल है, हम ही है। तो बाबा ने कहा मैं तुम लोगों को सजाते रहता हूँ, यहाँ तुम में से हर एक का मॉडल कहाँ पर है, वतन में। वतन में एक म्यूजियम है और वहाँ पर हमारा मॉडल है, और बाबा क्या करता है वहाँ पर बैठ कर सजाते रहता है। ये कितना अच्छा ड्रिल है कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का मॉडल कहाँ है, परम सूक्ष्म वतन में, और बाबा क्या कर रहा है वहां पर, उसको सजा रहा है। मुझे यहां पता है मेरे अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, बहुत अहंकार है, हर चीज का अहंकार भरा है, क्या क्या बताऊं, ज्ञान का अहंकार है, योग का अहंकार है, सेवाओं का तो पूछो मत, मेरे जैसी तो सेवा दूसरा कोई करता ही नहीं, दूसरे तो लिंबू टिंबू, हम ही है यहां पर जो है वो, हमसे हमारी वजह से तो चल रहा है सब, हम हट जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे चिपकली सोचती है, चिपकली के दोस्त उसको कहते चले हम पिकनिक चलते, चिपकली नहीं थी, मैं कहती मैं नहीं आ सकती, अगर मैं चली गई तो छत गिर जाएगी, वैसे हम भी चिपकली, हम सोचते हम अगर चले जाए तो ये यज्ञ क्या क्या होगा, कितने अहंकार भरा है, हम बड़े अहंकारी, बहुत अहंकार है, हर चीज का अहंकार, ज्ञान का तो सबसे ज्यादा अहंकार है, हमें योग का तो पूछो मत, पुरुषार्थ का भी कितना अहंकार है, तुम कम पुरुषार्थी हो, जो अमृत वेला नहीं करते उसके तरफ कैसी दृष्टि से देखते, इसका कुछ नहीं हो सकता, अमृत वेला ही नहीं करता, जो ज्ञान चिंतन नहीं करता उसको कैसे दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्या सोचो मेरा संपूर्ण स्वरूप का मॉडल सूक्ष्म वतन में है और बाबा उसे सजा रहे, स्वयं भगवान सजा रहा है, बाप दादा सजा रहे। तो मुझे तो पता है मेरे में अहंकार है, परंतु वो ठीक करेगा, मैं समर्पण कर दिया है, इतना भी काफी है। हर एक को अपने अहंकार का पता होना चाहिए, हर एक को अपने अहंकार निकले नहीं है उससे, मुक्त नहीं हुए, कारण पता है एक दिन ये पता होना ही मुक्त करा देगा। एक है वो लोग कि जिनको पता ही नहीं कि वो अहंकारी है, एक है दूसरे कि जिनको पता है कि बहुत अहंकार है। बाबा क्या करूं, अब ये अहंकार छूटता नहीं। अगला नेक्स्ट, इसमें एक बात और कही है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त भाव में आओ, ये बाबा ने कहा है। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ, ये दो पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट ड्रिल, ड्रिल नंबर 8, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा, मैं दादी ने कहा, मैं लाइट के बादलों के बीच से बाबा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देख रही थी, और फिर बाबा ने एक बात कही, अवस्था तब बनेगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुखी अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्मा को आप बच्चों से साक्षात, बच्चों को आत्माओं को आपसे साक्षात्कार होगा। क्या करना है, एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग करना, ये ड्रिल। एकांत में चले जाओ आज सारे दिन भर बीच में, और क्या करो, अंतर्मुखी हो जाओ और खुद की चेकिंग करो। आज ये सेवा की, कोई अहंकार तो नहीं आया, आज ये बोला, ये कहना कि मैं इतना योग लगाता हूँ, उतना योग लगाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, कितना सूक्ष्म अहंकार भरा है इन सब शब्दों में। गिनती है हमारी, अमृत वेले की गिनती, सब चीज़ों की गिनती। नेक्स्ट, बाबा को देखा, एक दूसरा दृश्य सामने प्रकट हुआ। बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे, साथ साथ प्रेम का सागर था। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। क्या ड्रिल है, जैसे बाबा ने हमें अपनी बाहों में समाया, वैसे हमें क्या करना है, विश्व की सभी आत्माओं को प्रेम की अनुभूति करानी, समीप लाना है इस यज्ञ के, ये एक ड्रिल। और लास्ट ड्रिल कार्ड्स की ड्रिल है। बहुत सारे कार्ड रखे हुए थे, दादी को कहा बाबा ने कार्ड्स को सजाओ, तो दादी कार्ड को सजाने लगी और उल्टा सुल्टा होने लगा, बाबा हंसने लगे। कभी सतयुग का सीनरी बनाई, एक बाल कृष्ण झूल रहा है, साथ में कांता झूला रही है, दूसरे में सखिया खेल रही है, मतलब कि सतयुग की दिनचर्या, ये खेल है। कौन सा खेल, सतयुग के चित्र बनाना, कार्ड सजाना, कोई भी चित्र बनाओ, जैसे हमारे निखिलेश भाई चित्र बना देते हैं फटाफट, वैसे हर एक को आज जो मुरली चलेगी ना उससे एक छोटा सा चित्र बनाना, अभी बन रहा है पीछे, तो एक चित्र बनाना उससे, एक रोज एक एक, जैसे बच्चों की कॉपी बुक होती है ना, पेंटिंग बुक, ड्राइंग बुक, वैसे एक ड्राइंग बुक खरीद लो और रोज एक चित्र बनाओ उसमें, ये बहुत अच्छी ड्रिल है। हमने चालू किया था, कुछ दिन चला पर खो गए, आज से वापस चालू करते भूल गया था, आज याद आ गया। ज्यादा दिन नहीं चलता बस, पर ठीक है जब तक चले तब तक चले, जब ये कोई याद करेंगे तो वापस चालू करेंगे, तो आज एक वापस चालू कर देना ठीक है। नेक्स्ट ड्रिल, स्वर्ग की टिकट। यहाँ पे एक दृश्य दिखा, भीड़ लगी हुई थी, दादी ने पूछा क्या हो रहा है, तो वहां दादी को बताया यहाँ स्वर्ग की टिकट मिल रही है, और कुछ लोग थे आराम से बैठे थे, वो कहते थे बाद में लेंगे अभी बहुत टाइम पड़ा है, और बाद में फिर दरवाजा बंद हो गया, और जिनको टिकट मिल गई वो स्वर्ग पहुंच गए, और जिनको नहीं मिली वो पश्चाताप करते रहे। और कई बच्चे सोच रहे थे अब नहीं बाद में ले लेंगे, लेकिन ऐसे ना हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग का गेट बंद हो जाए, तो जो करना है वो अभी करो, स्वर्ग की टिकट अभी मिल रही है, फटाफट आ जाओ टिकट ले लो और आगे बढ़ जाओ, नहीं तो बाद में पश्चाताप। और लास्ट ड्रिल, नदी वाली, ये सबने सुना है कई बार, नदी बह रही है और कई लोग जा रहे हैं स्नान करने, कई लोगों का कहना है हम बाद में कर लेंगे अभी टाइम पड़ा है, तो ज्ञान स्नान, ज्ञान की नदी, जो नज़दीक वाले हैं उनको इसका महत्व नहीं है, नज़दीक वाले आबू निवासी, और जो दूर से आए हैं जैसे हम लोग जो दूर से आए हैं हम सब, तो वो लोग स्नान कर रहे हैं, नज़दीक वाले को इतना महत्व नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं और एक चीज़ कर रहे हैं, वो उनको उनका उमंग उत्साह भी कम कर रहे हैं जो यहाँ दूर से आए हुए हैं, खुद तो ज्ञान योग नहीं करते पर दूसरों को भी करने नहीं देते, दूसरों को दूसरे करते हैं तो बेचैनी और जलन होती है, उसको भी टांग खींचना। तो बाबा ने ये दृश्य भी दिखाया, और फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, नदी ने अपना मोड़ रास्ता बदल दिया, और फिर बाकी लोग पश्चाताप करते रह गए। तो सार, यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिला है वह कभी भी गंवाना नहीं। लास्ट में एक महामंत्र की सौगात दी, मुझ परम पिता को याद करो और अपने जीवन को पवित्र योगी बनाओ। तो ऐसी कितनी ड्रिल थी ये, 12। फिर से रिवाइज करते हैं, सबसे पहली सूक्ष्म वतन में जाने का अभ्यास, या फिर ऊपर जाने का अभ्यास, या फिर ऊंचाई में रहने का अभ्यास। दूसरी ड्रिल, देही अभिमानी स्थिति, उसमें क्या बताया, स्थिर बैठने का अभ्यास, जो आज दोपहर में करेंगे। तीसरा, दृष्टि, बाबा से जब भी देखो सोचो उसमें स्नेह का सागर है, मैं दृष्टि ले रहा हूं। तीसरा, चौथा, दिव्य गुणों की मुझ पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। पांचवा, तीन गुलाब, तो जो सबसे नेचुरल गुलाब है रोज, उसकी पंखुड़ियां खुल जाती है अपने आप, तो ये देह हृदय के संबंध, ये बहुत नेचुरल है मेरे लिए, ये तो कभी मेरा था ही नहीं, नेचुरल प्योरिटी है, बचपन से ही प्योरिटी है, कुछ प्रयत्न किया ही नहीं हमने, ऐसा सोचते रहो दिन रोज एकांत में बैठ के ये सोचो। नेक्स्ट, सब दूसरों के विचारों को रिगार्ड दो, चाहे मूर्ख से मूर्ख हो और विकारी से विकारी हो, पापी से पापी हो। अगला, अपने कंप्लीट फॉर्म को बाबा ऊपर, मॉडल है मेरा जो बाबा सजा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं, भगवान, मुझ में दोष बहुत है जानता हूं, पर जो सजा रहा है वो निर्विकार है। अगला, एकांत अंतर्मुखी होकर सेल्फ चेकिंग। अगला, सर्व, जैसे बाबा ने हमें अपने गले में लगाया, सब आत्माओं को हमें स्नेह का अनुभव कराना। नेक्स्ट, कार्ड, तो चित्र बनाने का अभ्यास वापस चालू कर देंगे आज, अपनी एक ड्राइंग बुक बनानी है उसमें चित्र बनाना है। नेक्स्ट, स्वर्ग की टिकट के वहां खड़े हो जाओ, और फिर लास्ट नदी। तो ये अभ्यास है आज सारे दिन भर के। अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाए, किए बाबा से जो वादे वो पूरे कर दिखाए, दैवी गुणों का सदा पहने रहे हम गहना, तेरे वतन में बाबा दिल चाहे अब तो रहना। ओम शांति।